Om Shanti. Ratikla Shradha 20-12-68 का दूसरे पेज के एकदम मध्यांत में बात चल रही थी। भगवान का रथ भागीरथ बहुत प्रसिद्ध है, जो कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली होता है? अच्छा, फिर प्रवेश करने की दरकार क्या है? षष्ठी कल्प में हर चीज आदि में सत्व प्रधान और अंत में तमो प्रधान होती है। ऊपर से आने वाली जो भी आत्माएं हैं, जो परमात्मलोक से आती हैं, आत्मलोक से आती हैं, पहले पहले सत्व प्रधान पार्ट बजाती हैं और अंतिम जन्म में तमो प्रधान पार्ट बजाती हैं। जब तमो प्रधान पार्ट बजाती हैं तो सभी आत्माओं के रथ भाग्यशाली कहे जाएं या दुर्भाग्यशाली कहे जाएं? दुर्भाग्यशाली शरीर हैं, आत्मा भी दुर्भाग्यशाली बन जाती है। बहुत दुखी जब आत्माएं हो जाती हैं तब अंतिम जन्म में परमात्मा बाप आकर के दुखी दुनिया को सुखी बनाने के लिए आते हैं, और सुखी बनाने के लिए मनुष्य आत्माओं का जो बीज है, पहला बीज जो सबसे पुराना है, जरूर शरीर भी पुराना होगा। उस पुराने से पुराने शरीर में, पुरानी दुनिया में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं, मेरे लिए कहते भी हैं, दूर देश से आने वाला आया देश पर आए, उस पराए देश में पतित तो सभी हैं, एक बीज की ही बात नहीं है। और जो पतित हैं वो सब पुकारते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। ऐसे नहीं कहते हैं कि ज्ञान सुनाने के लिए आओ। अथवा ज्ञान सुना के चले जाओ, हम पावन बनते रहेंगे। तो भगवान ऐसे समझाते हैं और मनुष्य ऐसे समझाते हैं। ऐसे ऐसे तुम समझाने देंगे तो ये अच्छा है। भगवान ने स्वर्ग कैसे स्थापन किया? स्वर्ग स्थापन करने के लिए स्वयं स्थिति का पहले पहले ज्ञान देते हैं। आत्मा स्वयं स्थिति में स्थित हो जाती है तो देव आत्मा कही जाती है। देवात्माएं सात स्वाभिमानी होती हैं, आत्म की स्थिति वाले होते हैं। नई दुनिया जब बनती है तो पहले पहले जरूर शिव जयंती होती होगी। भक्ति मार्ग में शिव जयंती मनाते हैं, तो बस शिव की ही महिमा गाते हैं। महिमा तो तभी गाई जाती है, वंदना तभी की जाती है जब कोई महिमावान कार्य किया हो, वंदन योग्य कार्य किया हो। क्योंकि जानते हैं भगवान ही ऊंचे ऊंचे महिमा वाला है, उनकी महिमा से जास्ती ऊंची महिमा और किसी की हो नहीं सकती। इसलिए वो हमारा बाप भी है, सिर्फ हमारा बाप नहीं है, दुनिया में जो भी बाप हैं उन सब बापों का बाप है। ग्रेट फादर्स जो धर्म पिताएं आते हैं उनका भी बाप है। उनको भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला है, इसलिए उनके ग्रंथों में भी लिखा हुआ है जब कयामत होगी तो हमारे धर्म पिता फिर से आवेंगे। वो नहीं जानते हैं कैसे आवेंगे। भगवान ही आकर के उन बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। वो भगवान जैसे सुप्रीम बाप है वैसे नॉलेज देने के हिसाब से सुप्रीम टीचर भी है। वो सबको टीच करने वाला है, सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है। उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला एक भी पैदा नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम टीचर है। धर्म पिताएं भी उससे पढ़ाई पढ़ते हैं। और अपने सारे फॉलोअर्स को वो पढ़ाई फैलाते हैं, भले पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते। पूरी पढ़ाई पढ़े तो संपन्न देवात्माएं बन जावे, परंतु वो तो फरिश्ता ही बन करके रह जाते हैं। तो वो बाप भी है सुप्रीम टीचर भी है, फिर साथ में ले जाने वाला सदगुरु भी है। सारी दुनिया की आकर के सदगति करते हैं। पतित दुनिया में देवताएं तो पैर ही नहीं रख सकते, पतित दुनिया में भगवान ही आकर के पैर रखते हैं। स्थूल पांव की बात नहीं है, खुन को स्थूल हाथ पांव तो होते भी नहीं, ये तो बुद्ध रूपी पांव की बात है। देव आत्माएं तो इतने कोमल स्वभाव की हैं कि उन्हें तो झट संग का रंग लग जाता है। भारत में ही स्वर्ग था, वो देवताएं भारतवासी थे, वो भारतवासी देवताएं ही कोमल स्वभाव होने के कारण और धर्मों में कन्वर्ट होती रहे। तो वो देव आत्माएं पतित दुनिया में पांव कैसे रखेंगी? उन देव आत्माओं में पहला पत्ता है कृष्ण की आत्मा, वो देव आत्मा है सूक्ष्म शरीरधारी भी है और सूक्ष्म शरीर के साथ होने के कारण देवात्मा है। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म देवताएं थे और हैं, वो अभी की यादगार है। वो सूक्ष्म शरीर वाले देवताएं सूक्ष्म शरीर से पतित शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, हाँ कोई जन्म से ही कन्या हो, शुद्ध वातावरण में पली हुई हो, उसमें प्रवेश भी कर सकते हैं। प्रवेश करके पतितों को पावन बनाने वाला ज्ञान थोड़े दे सकेंगे। देव आत्माएं तो जरूर दिव्य ज्ञान दिव्य गुणों का देंगे, दिव्यता को बढ़ाने वाली की वाणी सुनाएंगे। तो देवताओं के पांव इस दुनिया में नहीं आ सकते, आवेंगे तो उन्हें बीज रूप आत्मा बनना पड़े। बीज आत्मा को देवता नहीं कहा जाता, देवताएं इस दुनिया में हो ही नहीं सकते। सूक्ष्म वर्तनवासी हो सकते हैं, फरिश्ताओं के रूप में गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे इन बातों को बहुत युक्ति से समझा सकते हो। कि पतितों को पावन पतित मनुष्य तो इस दुनिया के बना ही नहीं सकते, जो खुद ही भ्रष्ट आचरण से भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा हुए हैं। देव आत्माओं के पांव इस दुनिया में पड़ नहीं सकते, तो जरूर भगवान ही पतित को पावन बनाने वाला है। समझाने वाला बहुत मजबूत चाहिए। शिव जयंती के दिन ऐसे ऐसे अपनी बात बताओ कि शिव बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, बोलो। वो बेहद का बाप है, हद के बाप तो इस दुनिया में हुए, एक से एक ग्रेट फादर्स कहलाए, बड़ी बड़ी जनरेशन उनको अपना बाप मानती है, फिर भी वो बेहद के बाप नहीं है, उनको भी हद का बाप कहेंगे। भले क्राइस्ट के 200 करोड़ फॉलोअर्स हों, फिर भी वो हद का बाप है। वो आत्माओं का बाप तो 500 करोड़ 700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब का क्रिएटर बाप है, और मनुष्य शक्ति के बाप में प्रवेश करता है। ये बात ही तुम अगर सिद्ध कर दो तो कहेंगे ये तो राइट बात है, राइट ही ऐसे ही बताते हैं। 20-12-68 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये सभी बातें तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। परिचय देना है, परिचय को कहानी का रूप दे दो तो कहानी रोज सुनते रहेंगे। कहानी अगर न सुने तो कट हो जाएगी। भारत में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना, कथा माने कहानी। तो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कैसे चक्र में फिरते हैं रोज रोज सुनावेंगे ना। अगर वो कहानी नहीं सुनेंगे तो पढ़ाई कट हो जाएगी। उस ऊंचते ऊंच पाठधारी के बच्चे नहीं बन सकेंगे। ये सभी ख्यालात करनी है। शिव जयंती पर क्या क्या सुनाना है, क्या क्या समझाना है। जो मनुष्य इन बातों को समझें, ये शिव जयंती क्यों कहते हैं, हम तो जन्म जन्मांतर महाशिवरात्रि मनाते आए हैं, हमने तो कभी सुना ही नहीं कि शिव का जन्म भी होता है, तो बताना पड़े कि बेहद की आत्माओं का बाप दिव्य जन्म लेते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। कब लेते हैं उसकी यादगार है महाशिवरात्रि। सारी दुनिया तो क्या, साक्षात ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, वो भी घोर अज्ञान की नींद में सो जाते हैं, तब महाशिवरात्रि गाई जाती है। जबकि बाप प्रत्यक्ष होते हैं, बाप हमको आकर के इस रथ द्वारा पढ़ाते हैं। जिस रथ की महिमा भाग्यशाली रथ के रूप में की जाती है कि भागीरथ ने ज्ञान गंगा लाई, बाकी कोई पानी की गंगा के उतरने की बात नहीं है। ज्ञान कोई कन्या नहीं लाती है, जो कन्या के रूप में गंगा को दिखाई दिया है वो तो उस ज्ञान को धारण करने वाली है, ज्ञान को वितरण करने वाली है, ज्ञान देने वाला तो स्वयं शिव बाप है, जो भाग्यशाली रथ के तन में प्रवेश करता है। जिसे तनदारी को दुर्भाग्यशाली से भाग्यशाली बनाता है, सारे विश्व का मालिक बनाता है, तो उन्हें बताओ, समझाओ कि हम उस रथ के द्वारा पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला शिव बाप है और शिव बाप से हमारी आत्मा ही पढ़ती है। शिव बाप आत्मा है, वो भी अविनाशी आत्मा है, हम भी अविनाशी आत्मा है। हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, वो अविनाशी बाप आकर के हमको आत्मा का ज्ञान देता है, इसलिए हमारा बाप है। जैसे कि हम आत्मा को जन्म देता है, आत्मा की नॉलेज देते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। रूह का कनेक्शन अनेक जन्मों से है, जो भी 84 के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, चाहे पूरे 84 जन्म लेने वाली हो, चाहे कण जन्म लेने वाली हो, सबका परिचय मिल जाता है। ये बाप की ही नॉलेज है जो हर आत्मा रूपी एक्टर को अपने जन्म जन्मांतर की एक्ट का स्मरण दिलाती है। तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को सिखलाया है, वो ज्ञान बुद्धि में धारण किया है। वो बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करता है। उसमें प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो ही स्वरूप पतितों को पावन बनाने वाला है और पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है, बाकी तो सब पतित बनाने वाले हैं। पतित पतितों को पतित ही बनावेंगे। एक बाप ही एवर प्योर है जो सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला है, और तो जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है वो सब पतित से पावन से पतित बनती है। ऊपर से नीचे की ओर जाती है, बाप तो पतित सृष्टि में आने के बावजूद भी, पतितों के संग के रंग में आने के बावजूद भी, पतितम कामी कांटे में प्रवेश करने के बावजूद भी, कभी भी पतित नहीं बनता, वो कभी प्रभावित होता ही नहीं, उसको कोई के संग का रंग लगता ही नहीं, वो बाप ही आकर के बताते हैं। इस मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता कृष्ण है, जो शास्त्रों में पीपल के पत्ते पर गर्व के रूप में गाया हुआ है कि प्रलय काल के बाद पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया पहले पत्ते के रूप में, वो कृष्ण भी पतित पावन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पत्ता भी जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, हद में भी जन्म मरण के चक्र में आता है, और बेहद का बाप जब बेहद के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता है तो भी निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के चक्र में आता है। इसलिए पतित पावन कृष्ण नहीं हो सकता, उसे कृष्ण कहो या ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। मनुष्य पतित पावन हो ही नहीं सकता, मनुष्य का तो मन चलायमान होता है, या तो मन को एकाग्र करके दिखावे, जैसे स्वयं शिव बाप मन है, ऐसे मन की गति को जान करके दिखावे। शिव बाप तो असोचता है, सदैव निसंकल्प है, निसंकल्प होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। वो ज्ञान का सागर है, जो जितना ज्ञानवान होगा वो उतना ही पावन बनता है। सदैव ज्ञानवान है तो सदा काल के लिए पावन है। तो ऐसी ऐसी बातें सेमिनार में समझाओ, सेमिनार बड़ा होगा तो अच्छी तरह विचार सागर मंथन करके स्पीकर बनो, फिर बताओ कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होती है। शांति स्थापन करने के लिए शास्त्रों में शांति देवा गाया हुआ है, शांति वो ही दे सकता है जो स्वयं हर परिस्थिति में हर समस्या के आने पर स्वयं शांत स्वरूप बना रहे। तो सतयुग के आज से लेकर के कलयुग के अंत तक क्या क्या होता है सब बताओ। तुम सारे कल्प की हिस्ट्री सुना सकते हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बाप भी याद रहेगा। तुम्हारी बुद्धि भी चलती रहेगी। क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बाप में सारे वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ रहता है। स्वयं निसंकल्पी बाप, असोचता आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है। मनुष्य सृष्टि के बाप में जैसे सारा ज्ञान भरा हुआ है मनुष्यों का, मानवीय सृष्टि का, जो बाप रूहानी बाप के आने पर इमर्ज हो जाता है, उसमें आए हुए रूहानी बाप तुमको याद आते रहेंगे। ऐसा लक्ष्य रखना है कि हमको भाषण करना है, रहस्यमयी आवाज से सृष्टि की गुह्य बातें सुनाकर सारी मनुष्य सृष्टि को जागृत करना है तो सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा। उस कल्याण का मुआवजा तुमको भी मिल जाएगा। तो अपने अंदर देखना चाहिए कि हम बच्चों को हरदम बाप याद आता रहता है, दुनिया में तो कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं होगा कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। और जन्म जन्मांतर क्या बनने वाले हैं, तुमको तो पता पड़ जाता है। अगर प्रिंस बनेंगे तो भी कौन सा प्रिंस बनेंगे, कौन सी डायनेस्टी के प्रिंस बनेंगे, बाप तो आकर के राजाई स्थापन करते हैं, राजाई में डायनेस्टी चलती है ना। जैसे अंग्रेजों में डायनेस्टी चली, किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे बाप भी जो राजाई स्थापन करते हैं राजयोग सिखा करके, उसमें भी डायनेस्टी चलती है, नारायण जी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो मालूम पड़ेगा कौन सा प्रिंस बनेंगे। जो चित्र सामने खड़ा है ये लक्ष्मी नारायण तो मशहूर हैं, ये कोई अकेले लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, और दूसरे भी बनेंगे। परंतु पहले नंबर की महिमा हो जाती है औरों की फिर नंबरवार। पहले नंबर जो लक्ष्मी नारायण है उनकी जैसी महिमा तो और कोई की हो ही नहीं सकती। शास्त्रों में उनकी कोई ग्लानि नहीं है। 33 करोड़ देवताओं की ग्लानि भरी पड़ी है, इन लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो पूरी माला बनती है, माला में नंबरवार संगठन के मड़के पिरोए जाते हैं। तो तुम्हारे पास तो बहुत बातों का समझाने का स्टॉक है। एकांत में बैठते हैं तो भी यही सब बताना है। एक एक के सामने समझाने बैठते हैं तो भी यही बताना है कि बेहद का बाप हमको क्या क्या सिखलाते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद किया, गुड नाइट और नमस्ते। अगला रात्रि क्लास है 21/12 का। हर एक सेंटर को जितना चाहिए उतना सर्विस का शो करे। जो बाप से सीखे हैं वो औरों को भी सुना दें। सबको रचयिता और रचना का राज समझाना है। जो जो भूले हुई हैं मानवीय सृष्टि की हिस्ट्री में, 2000 साल की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है ना, वो सारी भूलें बतानी है। बताना है कि रूहानी बाप कहते हैं कि मैं जो हूं और जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाता हूं, उसे मुश्किल ही कोई जानते हैं। नहीं तो जानते जानते फिर भूल जाते हैं। निश्चय बुद्धि होने के बदले अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ये भी समझाने का बड़ा पॉइंट है। अब कृष्ण तो कोई ऐसा साधारण नहीं है जिसको कोई जान न सके। कृष्ण की सुंदरता तो असाधारण है, अंतिम जन्म में भी कैसा सुंदर, गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा शरीर मिलता है। तो उससे पहले जन्मों में तो क्या नहीं होगा। सारी सृष्टि भर में उनको जानते हैं। हिंदुओं की तो बात ही छोड़ो, मुख्य धर्मों में जो आखिरी धर्म क्रिश्चियन धर्म है वो भी लॉर्ड कृष्ण को जानते हैं। जानते हैं कि वो मोर मुकुट वाला है। मोर मुकुट कौन कहा? अरे कौआ मुकुट कह देते। अंग्रेज आए, भारत में आक्रमण किया, तो मोर मुकुट लेकर के तो नहीं आए। अलेक्जेंडर ने भारत में आक्रमण किया तो मुर्गे का मुकुट लेकर के आए होंगे, मोर मुकुट लेकर के तो नहीं आए। ये तो हिस्ट्री की बातें हैं। भारत में तो आज भी मोर की पूंछ का जो पंख है उसकी महिमा के आधार पर मयूर पक्षी को इतना मान दिया गया है कि उसे राष्ट्रीय पक्षी मान करके घोषित कर दिया गया। मनुष्य को मारने की जो सजा होती है वही सजा मोर के मारने वाले को भी होगी। वो तो पक्षी है, जानवरों के बाद पक्षियों का नंबर आता है। पहले पहले तो मनुष्यों की जनरेशन है, तो भी देखो मोर पंख का कितना गायन है। कृष्ण के मुकुट में, मस्तक में मोर पंख दिखा देंगे। तो देखो तो कृष्ण ऐसा नहीं है जिसको कोई न जान सके। फिर कृष्ण ऐसा क्यों कहेगा कि मेरे को कोई बिरला ही जान सकेगा? गीता में तो भगवान ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेशो कश्चित्य तत् सिद्धये, भूत प्रेतों को सिद्ध करना फिर भी आसान है, देवताओं को सिद्ध करना और भी कठिन है, भगवान को सिद्ध करना तो बहुत कठिन है। गुह्यते ज्ञान गुह्य सुनाने वाला है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स तुम बच्चों को निकालने चाहिए कि बाबा ने हमको क्या समझाया है। ऊंचे ते ऊंचे बाबा है तो जरूर ऊंची बात बता देगा, साधारण अर्थ वाली बातें नहीं बतावेगा। और तुम्हारे लिए तो ये बाबा अक्षर ही बहुत मीठा है। बच्चे यहां अच्छी रीति सुनते हैं पर तो बाहर जाते हैं तो माया भुलाई देती है। तो कहेंगे ये तो हमको पहले समझाते थे, सिखलाते थे, फिर अभी तो ये ट्रेटर बन पड़े। जिसकी महिमा करते थे, भगवान के रूप में प्रत्यक्ष करते थे, उसकी ग्लानी करने लग पड़े। हमको समझाने वाले को माया ग्रह ने पूरा ही हप कर लिया। शास्त्रों में कथा कहानियां भी बनाई दी है। बाप ने तो समझाया है तुम 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो, फिर बाप को भुलाकर अर्थात माया से हराकर देह अभिमान में आकर के अपना सत्यानाश क्यों करते हो? अपना माने आत्मा का, आत्मा सत्य है, देह असत्य है। आत्मा सत्य सदैव रहेगी, देह आज है कल नहीं रहेगी। बाप आकर आत्मिक स्मृति में ठहर आते हैं। तो तुम सतयुग में जाने वाले सत्य आत्मा बन जाते हो, सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे बन जाते हो। माया तुम्हें ऐसा भरमाती है कि देह भान में ला देती है, आत्म की स्मृति को ही भुला देती है, तो तुम्हारी आत्मा का सत्यानाश हो जाता है। तो दिल में आता है ना, समझा देंगे, ये तो जानते हैं। जो ट्रेटर बनते हैं वो कलप पहले भी बने हैं, भक्ति मार्ग में भी ट्रेटर बन करके रहे हैं, और धर्मों में कन्वर्ट होकर के कितनी भारत की और भारतवासियों की ग्लानी की है, कितने देवताओं की ग्लानी की है। तो जिनमें ये ज्ञान होगा वो ज्ञान की बातें सुनावेंगे, अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो उल्टी बातें ही समझावेंगे सुनावेंगे। कोई भी प्रकार से कोई डिसरिगार्ड करते हैं तो वो अपने ही पांव पर कुठारा लगाते हैं, जैसे कोई अपने हाथ से अपने पांव में छुरा भोंकता हो, लंगड़ा हो जाएगा, न चल सकेगा पुरुषार्थ में और न दौड़ सकेगा। बाप तो आते ही हैं सदा सुखी बनाने के लिए, समझदार समझू सयाना बनाते हैं। बाप दादा को भूल कब कोई पढ़ाई को छोड़ नहीं सकता, अगर पढ़ाई कोई छोड़ देते हैं या मिस करते रहते हैं तो उनका बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। बेड़ा कोई काठ की नवैया कोई नहीं कहा जाता है, जहाज कोई नहीं कहा जाता है, ये शरीर रूपी बेड़ा है। इस बेड़े का खेवैया बाप आया हुआ है, इस शरीर रूपी नवैया में बाप खेवैया है। ये जहाज के रूप में कार्य करने वाला है, शास्त्रों में भी इसका गायन है, चंद्रकांत वेदांत जहाज। उसमें ढेर की ढेर नैया आधार लेकर पड़ी रहती है, जहाज डूबता है, जैसे कि त्रेता के अंत में जहाज डूबा था तो लोग नवैयों पर सवार हो गए, डूबते उछलते, कोई पहले पहले नवैया पर सवार हुआ, कोई बाद में सवार हो गए। ये अनेकानेक धर्मों की नवैया हैं, जो सब एक बाप का सहारा लेती है। मां विनाश के काल में वो चाप कहो, वो धनुष कहो, वो जहाज कहो, शास्त्रों में गाया हुआ है, सिखों में भी कहते हैं नानक चाप जहाज। अब उन्होंने तो नानक को सदगुरु समझ लिया है, उनके आने के बाद तो और ही दुर्गति होती गई। अरे भगवान के आने के बाद मनुष्य सृष्टि की अगली जनरेशन सदगति में जानी चाहिए या दुर्गति में जानी चाहिए? भगवान तो सबका सदगति दाता है। तो आते हैं, बताते हैं कि अभी बेड़ा गर्क नहीं करना है, हमको तो पूरा देही अभिमानी बन बाप से बरसा लेना है। देह अभिमान में आने से धोखा खाया जाता है, नहीं तो अच्छे अच्छे को माया हप कर लेती है और उनको एकदम पता ही नहीं पड़ता, समझ ही नहीं आती है हमने क्या कर दिया। माया बिल्कुल नकल को चट खाते में ले जाती है। नहीं तो स्टूडेंट लाइफ में टीचर से कोई दुश्मनी नहीं रखनी होती है, बाप तो कितनी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताकर बच्चों को उन्नति में ले जाते हैं, रोज रोज जो समझाते हैं कल्प कल्प वो ही बातें समझाते रहेंगे, और ये है ही कल्याणकारी बातें। बाप भी कल्याणकारी है, बाप की एक एक बात कल्याणकारी है, आते भी कल्याणकारी संगम युग में है और एक एक आत्मा का कल्याण करते हैं, सारी सृष्टि का ही कल्याण करते हैं। ऐसा काम करने के कारण ही उनका नाम कल्याणकारी शिव है। ये नाम और कोई के ऊपर सुशोभित नहीं होता, क्योंकि काम के आधार पर ही नाम पड़ते हैं। देह के बाप की एक एक बात में कुछ न कुछ कल्याण जरूर भरा पड़ा है, अंदर में खुशी रहती है। हम यह लक्ष्मी नारायण जैसे जाकर बनेंगे अगर हमने पढ़ाई छोड़ दी, मिस कर दी, इरेगुलर रहे, पंक्चुअल नहीं रहे, तो कुछ न कुछ अकल्याण जरूर होता रहेगा, फिर तो हम लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकेंगे। फिर बाप का निंदक ठौर न पावे, कौन से ठौर की बात है? ठौर माने स्थान, ठौर माने पदवी, ठौर माने कुर्सी, जो अष्टदेवों की कुर्सी बनती है, अष्टदेवों को जो ठौर मिलता है वो स्थान तो नहीं पा सकेंगे। जैसे तकड़ा चढ़ाते हैं वैसे उतरते भी हैं, ठीक पढ़ते नहीं हैं तो फिर उनको समझाना चाहिए, बच्चों को रहम दिल बनना है। बाप भी समझाते हैं, अरे तुम क्या क्या करते थे, जिसको गाली देते रहते थे वो ही तुमको आकर के पढ़ाई रही, अपकारी के ऊपर भी कल्याण कर रहे हैं, तो ऐसे बाप से बड़ी संभाल रखनी है। बाप समझाते तो बहुत से, मूल बात तो एक ही है कि विकार में नहीं जाना है, कार कर्म को कहा जाता है, विमाने विपरीत। भगवान जो कार्य करना सिखलाते हैं उसके विपरीत तो कोई भी कर्म नहीं करना है, कोई भी कर्मेंद्रिय से कोई विपरीत कर्म किया तो विकार के खाते में चला जाएगा। आंख से किया, हाथ पांव से किया, कान से किया, मुख से किया, कोई भी कर्मेंद्रिय से विपरीत कर्म किया तो विकार के खाते में जाएगा, विकर्म बनाए देगा, पाप कर्म बनाए देगा। और ब्राह्मण बनकर के पाप कर्म किया तो 100 गुना बोझा चलता है। त्रेसठ जन्मों में एक पाप का 1 गुना बोझा चढ़ता था। इस अंतिम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म में उसी पाप कर्म का 100 गुना बोझा चढ़ जाता है। तो पक्का करना है कि हमको कोई भी हालत में देह अभिमान में नहीं जाना है। माया कुछ न कुछ पाप कराती रहती है देह वाहन में लाकर के, फिर न बताने से और भी वृद्धि को पाता जाता है। सच्चा बाप आया हुआ है, सच्चा बाप जो सत्ययुग स्थापन करने वाला है, सच्ची बातें बताने वाला है, उसके साथ सच्चार होकर रहना है। नहीं रहेंगे तो पाप वृद्धि को पाता रहेगा, फिर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। बाप को बड़े प्यार से बहुत बहुत याद करना है। बाबा बाबा करते रहते हैं, बूढ़िया मुख से बाबा बाबा कहती रहती है, बिंदी याद भले ना आवे परंतु बड़े रूप में तो याद आता है। प्राण जाए परंतु मुख में से बाबा की याद न जाए तो अंतमते सुगति हो जाएगी। प्राण जाएंगे भी तो भी बाप की याद आएगी। ओम शांति।